मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 8 दिसंबर 2015 के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, एकेडमी की अगली जो क्लासेस होनी है 15 दिन की, वो फरवरी 2016 में होने वाली हैं और उसके लिए स्टूडेंट्स अपने रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। फरवरी की क्लासेस के लिए 9 स्टूडेंट ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, तो मैं इन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। ये 9 नौजवान साथी हैं, विवेक कमाल जो हमीरपुर से हैं, हिमाचल प्रदेश से, राकेश कुमार राम आप बक्सर बिहार से हैं, जितेंद्र कुमार गुप्ता आप हजारीबाग झारखंड से हैं, आप अगला नाम है जितेंद्र डांगी आप सतारा झारखंड से हैं, आकांक्षा सिंह अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से हैं, मनीष कुमार दुबे गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं, अजय भूरिया आप झाबुआ मध्य प्रदेश से हैं, शैलेंद्र कुमार जमुई बिहार से हैं और भगवान सिंह रेवाड़ी हरियाणा से हैं। मित्रों, अभी जो मैंने एक नाम लिया है जितेंद्र डांगी, 7 SATRA लिखा है, उच्चारण किस तरह का होगा, उसमें स्टेट का नाम झारखंड लिखा हुआ है, तो सही नाम आप लोग देख लेंगे। एग्जैक्ट सतारा तो एक महाराष्ट्र में भी है। तो इस प्रकार विवेक, राकेश, जितेंद्र गुप्ता, जितेंद्र डांगी, आकांक्षा, मनीष, अजय, शैलेंद्र और भगवान, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, कुछ ही दिनों के बाद 2015 खत्म हो जाएगा और 2016 की शुरुआत हो जाएगी, और 2016 के दूसरे महीने की जैसे ही खत्म होने की स्थिति आएगी, वैसे ही ये 15 दिन की क्लासेस का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब कुल इतना है कि अब बहुत अधिक दिन नहीं बचे हैं, जबकि ये हमारा फोर्थ बैच शुरू होने वाला है, जो मैं बार बार कहता हूं, और मैं चाहता हूं कि सप्ताह में कम से कम एक बार मैं आप लोगों को इस बात की याद दिला दूं। जो भी स्टूडेंट इस फरवरी के बैच में आने वाले हैं, प्लीज़ अपने को मानसिक रूप से तैयार करें, अपने को मानसिक रूप से मजबूत करें, अपने मानसिक पृष्ठभूमि को इसके लायक बनाएं। बीच बीच में मैं लगातार इसके बारे में बातें भी करता रहता हूं, और खासकर लाइफ मैनेजमेंट में तो इसी से जुड़ी हुई बातें ही रहती हैं। यहां मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगा मित्रों, कि आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ऐसे स्टूडेंट्स को जानते होंगे जिन्होंने फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच या थर्ड बैच अटेंड की है, उन लोगों ने आपको सजेस्ट किया होगा। तो एक बात मैं स्पेशली आज जो थोड़ी सी नई बात है मैं कहना चाहूंगा, कि जो आपके सीनियर्स हैं बैच के हिसाब से आप कह सकते हैं, उनसे प्लीज आप मिलें और क्लासेस के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करें। जानकारी इस मायने में कि वहां क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है, और वहां के लिए हमें अपनी तरफ से क्या तैयारी करनी चाहिए। डेफिनेटली चूंकि वे सब यहां आए हैं, यहां के पूरे माहौल को देखा है, यहां की जरूरतों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वो आपको बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पर बता सकेंगे कि आपको क्या तैयारी करके क्लास में यहां आना चाहिए। स्पेशली वो आपकी मानसिक स्थिति की जो तैयारी होनी चाहिए उसके बारे में डेफिनेटली बताएंगे। तो प्लीज उनसे ये भी आप पूछें, जाने, और उसके अनुकूल फिर खुद को ढालने की कोशिश भी करें। फ्रेंड्स, इसके बाद अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्टेज पर, जो लाइफ मैनेजमेंट का स्टेज है। फ्रेंड्स, आज मैं इस पर एक बहुत ही व्यावहारिक मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूं, और ये स्टूडेंट्स के साथ साथ डेफिनेटली जो दूसरे मेरे प्रिय श्रोता हैं उनके लिए भी मुझे लगता है कि उतने ही काम का विषय होगा। फ्रेंड्स, ये जुड़ा हुआ है खासकर मेरे रायपुर प्रवास के समय का। मैं जिस होटल में रुका हुआ था, उस होटल में मुझे एक बड़ी अद्भुत चीज देखने को मिली, सच पूछिए तो महसूस करने को मिली, और उससे मुझे इतना अच्छा लगा कि उसकी चर्चा मैं अपने इस लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट में करने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। मित्रों, मैं वहां सेकेंड फ्लोर पर था और मैं देख रहा था कि उस सेकेंड फ्लोर पर दो तीन लड़कियां थी जो होटल के काम में लगी हुई थी। उसमें से कुछ पोछा लगाती थी, कुछ जो रूम्स हैं वहां आकर के बिस्तर वगैरह बदलना, या आपको और कोई ऐसी जरूरत है, पानी चाहिए, पानी पहुंचाना, इस तरह के काम में वो लगी हुई थी। और उनकी उम्र मेरी समझ से 20 से 25 साल के बीच की ही रही होगी। दोस्तों, मुझे जो सबसे बड़ी और जो सबसे अच्छी बात लगी, दो बातों की मैं चर्चा करना चाहूंगा। पहला तो उनकी तहजीब, मतलब उनका शिष्टाचार, उनका व्यवहार, बातचीत करने का उनका तरीका, मतलब बहुत ही गजब का, जैसे कि वो बहुत ही कोई पढ़े लिखे और बहुत अच्छे परिवार की हूं। मित्रों, यहां मैं जो अच्छे परिवार की बात कह रहा हूं वो उस संदर्भ में नहीं, मैं जिस संदर्भ में बात कर रहा हूं वो कि हम सामान्यतः मान करके चलते हैं कि भाई ये बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत अच्छे परिवार का होगा, तो इसमें संस्कार के रूप में वो चीज आए ही होंगी। लेकिन ये बड़े आराम से समझा जा सकता है कि ये जो लड़कियां हैं जो काम कर रही हैं यहां आकर के, और जिस तरह का काम कर रही हैं, तो बट नेचुरल है कि इनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही होगी वो बहुत ही सामान्य स्तर की पृष्ठभूमि रही होगी। हो सकता है कि वो गांव की रहने वाली लड़कियां हों, थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के बाद फिर वो इस काम में आ गई हों, इसलिए मैंने उस शिष्टाचार की बात कही। ऐसा नहीं कि गांव के लोग अशिष्ट होते हैं या उनमें शिष्टाचार नहीं होता, लेकिन बातचीत करने का जो एक अलग तरीका होता है वो उनमें बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। जैसे अगर वो सुबह सुबह मिल गई तो गुड मॉर्निंग सर, आपने उनसे कुछ कहा, यस सर, थैंक यू सर, आपने अगर किसी चीज के लिए उनकी तारीफ कर दी तो वेलकम सर, मे आई हेल्प यू सर, तो इस तरह की बातें उनसे सुनने को मिल रही थी, जिसे मैंने अभी एक अलग तरह के शिष्टाचार का नाम दिया। तो दोस्तों, उनको देखने के बाद मुझे पहली बात जो स्ट्राइक की वो ये कि हमारे यहां जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू किया गया है लोगों को दक्ष बनाने का, लोगों को कुशल बनाने का, मुझे लगता है कि उसके माध्यम से हिंदुस्तान की तस्वीर बदली जा सकती है और लोगों की जिंदगियों को भी बदला जा सकता है। दोस्तों, इनमें जो ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, एक बहुत जबरदस्त डिसिप्लिन मैं देख रहा था, उनमें बहुत जबरदस्त डिसिप्लिन था। डिसिप्लिन इस मायने में भी कि उनकी जो ड्रेसेस थी वो बड़ी अप टू डेट ड्रेसेस थी, मॉडर्न ड्रेसेस, पैंट पहनी हुई थी, ऊपर शर्ट थी, और बकायदे जैसे टाई लगाई जाती वहां पर एक बो लगी हुई थी। उनका अपना जो मेकअप था, जो रख रखाव था, वो बिल्कुल साफ सुथरा और बिल्कुल परफेक्ट था। तो ये देखने के बाद ही लगता था कि ये एक अलग तरह की ही डिसिप्लिन लड़कियां हैं। और मित्रों, ये कौन है? ये वही है जो गांव में अगर रहती तो हम बड़े सामान्य तौर पर एक तरह से ठीक हैं लड़कियां हैं, जिनसे हम कोई बड़ी या अलग तरीके की उम्मीद नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते हैं कि ये इस तरह की भाषा बोलेंगी, इस तरह का जीवन जिएंगी, इस तरह का रहेंगी, इस तरह के हमारी बातों और काम के बदले में हमको रिस्पॉन्ड करेंगी, हम उम्मीद ही नहीं कर सकते थे। लेकिन हम यहां उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीद क्या कर रहे हैं, मतलब उनको देख रहे हैं। मित्रों, पहली बात। जो दूसरी बात, जो शायद मैं समझता हूं कि पहली बात से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि मुझे जो एक बहुत अच्छी चीज लगी वो ये कि सभी के चेहरों पर एक अलग तरह की मुस्कुराहट और एक अलग तरह की मुझे शांति दिखाई दे रही थी। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मुझे अलग तरह के शांति का अनुभव हो रहा था। उनको देखने के बाद उस शांति का अनुभव मैं खुद कर रहा था। अगर वो पोछा लगा रही हैं तो उनका चेहरा बिल्कुल शांत है। अगर वो जरा सा भी किसी को आते जाते देख रही हैं तो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट है, और उनकी जो पूरी की पूरी एक्टिविटीज थी, जो जेस्चर है जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, उस बॉडी लैंग्वेज से साफ लग रहा था कि वो अपने काम का पूरा आनंद ले रहे हैं। दे आर एंजॉइंग देयर वर्क। वो अपने काम का पूरे तरीके से आनंद उठा रहे हैं, अपने काम का सच पूछिए तो उत्सव मना रहे हैं। मित्रों, मुझे ये सोचना पड़ा कि हम सब जो बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, जिनके पास बहुत मतलब पैसा भी ठीक ही ठाक है, जो एक तरह से कह लीजिए कि बहुत ही सेफ दुनिया में रह रहे हैं, जिनकी थोड़ी सी सामाजिक पहचान भी है, और जिंदगी के कम से कम जिनके पास उस तरह के तो संकट नहीं है जो कि एक निम्न मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग का व्यक्ति जिनको झेलता है, हम सब इतने सुरक्षित होते हुए भी कहीं ना कहीं झुंझलाहट, चिड़चिड़ाहट और शिकायतों से भरे हुए होते हैं। और ये है कि जिनके पास कोई खास नहीं है, सैलरी भी कितनी मिलती होगी, बहुत ही सामान्य मिल रही होगी। मैं जानता हूं कि सैलरी कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मिल रही है, सैलरी बहुत थोड़ी होगी, इसके बावजूद खुश हैं और अपने काम को इतने अच्छे तरीके से कर भी रहे हैं, यानी कि वो जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो मित्रों, ये आनंद इनमें ये कहां से आ रहा है, कहां से छलक रहा है, कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जहां से कि ये उस एनर्जी को हासिल कर रहे हैं। मुझे लगता है मित्रों, ये सारा का सारी की सारी जो करामात है कुछ भी नहीं, केवल दिमाग की करामात है। दिमाग की करामात इस मायने में कि ये इन्हें जो कुछ मिल रहा है ये उसी के प्रति बहुत ज्यादा आभारी है, क्योंकि वो मानकर चल रहे थे कि हमको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और कुछ भी नहीं मिलने की पृष्ठभूमि में जब इतना सब कुछ मिल रहा है तो यह थोड़ा सा मिलना ही उनको बहुत ज्यादा लग रहा है। और जब आपको ज्यादा लगे, जो हम डिजर्व नहीं करते उससे भी ज्यादा जब हमें मिल रहा ऐसा लगे, तो स्वाभाविक है कि हमारे हृदय से आभार के संगीत तो फूटेंगे ही फूटेंगे। और उन आभार के संगीत को मैं वहां महसूस कर रहा था। वो ये जान रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि हम आज शहर में रह रहे हैं, यहां काम कर रहे हैं, हमने ये तहजीब सीख ली है, हम यहां सैलरी ले रहे हैं, हम अपने पैरों पर खड़े हैं, उनको अपना भविष्य भी पहले की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। तो मित्रों, जो चीज हमारे लिए बहुत सामान्य सी हो सकती है वही चीज उनके लिए विशिष्ट बन जाती है। तो दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो जीवन का जो आनंद है, जीवन का जो सुख है, और सच पूछिए तो जीवन की जो उपलब्धि भी है वो सच में इसी बात में है कि हम कैसे अपने जीवन का उत्सव मनाते हैं। और जीवन का आप उत्सव मनाएंगे कैसे, मुझे तो दोस्त बहुत साफ साफ लगता है फ्रेंड्स कि जब तक हम अपने काम का उत्सव नहीं मनाएंगे, जीवन का उत्सव मना ही नहीं सकते। आप खुद मुझे बताइए कि क्या हमारा काम हमारे जीवन से अलग है, क्या हम अपने काम को अपने जीवन से अलग करके देख सकते हैं, या हम अपने जीवन से क्या काम को खत्म कर सकते हैं। अगर हम अपने काम का आनंद नहीं लेंगे तो फिर जीवन का आनंद लेने का दूसरा उपाय हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारी जिंदगी का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है काम के साथ गुजरता है। केवल बड़ा हिस्सा ही नहीं बल्कि सबसे प्राइम, जो सबसे प्राथमिक वक्त होता है, जो ऊर्जा से भरपूर होता है, जो सच पूछे तो हम अपने समय को जिद कामों में प्राथमिकता के आधार पर लगाते हैं, वो सब हमारा काम ही तो होता है। और यदि हम इसी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, इसी का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, सुख की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो कौन सा उपाय बचता है कि हम अपने जीवन के प्रति अहोभाग्य व्यक्त कर सके। फ्रेंड्स, मुझे नहीं मालूम कि आप सब जो इसे सुन रहे हैं अपने काम का कितना आनंद ले रहे हैं। मुझे यह भी नहीं मालूम कि आप अपने पसंद का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मित्रों, ज्यादातर के मामले में तो यही होता है कि हर व्यक्ति को, ज्यादातर लोगों को अपने काम से शिकायतें होती हैं। दोस्तों, मैं खासकर उन गांव की बहुत कम पढ़ी लिखी लड़कियों के माध्यम से, जो सच पूछे तो उनको देखने के बाद मुझे जो जीवन का संदेश मिला है, उस संदेश को मैं आप लोगों तक पहुंचाते हुए केवल यही अर्ज करना चाहूंगा कि जीवन जैसा भी है बेहद सुंदर है, जीवन जैसा भी है बेशकीमती है, और जीवन जैसा भी है बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई कारण नहीं कि हम किसी भी वजह से अपने इस जिंदगी को दोयम दर्जे का समझे, कोई ऐसा कारण नहीं है। मित्रों, काम का आनंद लें, जो मिला है उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करें। जैसे कि जब हम प्रसाद लेने जाते हैं तो अपनी पसंद नहीं बताते कि मुझे इसका प्रसाद चाहिए, वो तो जो भी दे दिया जाता है उसे ही हम प्रसाद समझकर अपने माथे पर लगा करके और उसे ग्रहण करते हैं। क्यों नहीं हम काम को भी प्रकृति के द्वारा दिया गया, ईश्वर के द्वारा दिया गया, एक ऐसा ही प्रसाद समझें और अपने माथे से चुचकार कर उसको लगाकर और फिर उसे ग्रहण करें। आप देखेंगे कि देखते देखते जीवन की गुणवत्ता कितनी बदल गई है और जीवन की गुणवत्ता के बदलते ही काम की गुणवत्ता में कितना अधिक इजाफा हो गया है। ये होगा, मुझे लगता है कि इसका प्रोसेस ही यही है, इसका मैकेनिज्म ही यही है, इसका फार्मूला ही यही है। तो दोस्तों, अब मैं लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से के बाद अब AIR न्यूज पर आता हूं। आज के AIR न्यूज में एक दो बातें हैं जिनको लेकर के मैं थोड़ी सी चर्चा आप लोगों से करना चाहूंगा, और उसमें जो सबसे बड़ी जो खबर है सिविल सर्विस की दृष्टि से वो मैं नेशनल हेराल्ड वाली न्यूज को मानता हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों को मालूम होगा, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि जो सिविल सर्विस की तैयारी होती है वो घटनाओं पर आधारित तैयारी नहीं, घटनाओं की तैयारी नहीं होती, घटनाओं के पीछे जो तथ्य छिपे हुए हैं उनकी तैयारी होती है। जैसे कि अभी मैंने नेशनल हेराल्ड न्यूज की बात कही, आपने न्यूज में सुना कि नेशनल हेराल्ड जो अखबार हुआ करता था 1938 में जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निकाला था और बहुत ज्यादा वो चल नहीं पाया और बाद में 2008 में उस अखबार को बंद कर दिया गया। उसकी प्रॉपर्टी थी, उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज भी चढ़ गया था, तो उसको लेकर के फिर कर्ज को चुकाने की बात हुई, वो ये घटनाएं हैं ये सब, राइट। इसके बाद फिर 50 लाख रुपए में सोनिया जी ने और राहुल गांधी ने जो भी है वो ट्रस्ट बनाया, कुछ किया, उसकी प्रॉपर्टी खरीदी, इस तरह की जो घटनाएं हुई और इन घटनाओं के आधार पर फिर केस दायर किया गया। केस जब दायर हो गया तो जो कोर्ट है, लोअर कोर्ट जिसको अपने न्यूज में सुना है, यानी सेशन कोर्ट होगा, उस कोर्ट ने सोनिया जी को और राहुल गांधी जी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिए कि आप कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो। चूंकि अब सोनिया जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राहुल जी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं और एक डेमोक्रेसी में, और कांग्रेस मतलब जिसकी इतनी बड़ी स्वतंत्रता संग्राम में जिसका इतना बड़ा योगदान रहा है, जिसने इतने सालों तक इस देश पर शासन किया है, मतलब एक डेमोक्रेसी में कुछ भी हो तो एक जो बड़ी पार्टी कांग्रेस है और अभी जो दूसरी बड़ी पार्टी बीजेपी है अपने आप में मायने रखती हैं, तो जब उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सीधे सीधे व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने के लिए कहा गया तो उसके खिलाफ एक याचिका दायर की गई, अपील की गई सॉरी दिल्ली हाई कोर्ट में कि उनको मुक्त किया जाए, उनके बिहाफ पर कोई भी न्यायालय में खड़ा होकर के उनके बिहाफ पर बात कहेगा। उच्च न्यायालय ने उनकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया और उच्च न्यायालय ने सीधे सीधे दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से वहां उपस्थित होना पड़ेगा। यह घटना है मित्रों। अब न्यूज में यही थी कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो अब इसके भी खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, वो तो एक न्यायिक प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब ये जो घटना है, ये मैं जानबूझ करके थोड़े से विस्तार से इसकी बात कर रहा हूं ताकि आप घटनाओं को लेकर के किस प्रकार से उसके अंदर से सिविल सर्विस की तैयारी करने के सूत्र निकालेंगे वो खासकर आपको इसके माध्यम से जानना है। तो फ्रेंड्स, ये घटना थी और इस घटना में अब जो अंत में जहां हम आज स्थिति है पहुंचे हैं वो ये है कि एक होता है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन जिसे कह सकते हैं। कानून के शासन का मतलब है कि कानून अपना काम करेगा और जो कानून है उसके सामने सभी समान हैं, किसी के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है। खासकर राजतंत्र के बाद जो डेमोक्रेसी आई है उसका एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल ये है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, चाहे वो फिर देश का बड़ा से बड़ा कार्यकारी CEO हो, देश का बड़ा प्रमुख हो। नो डाउट कि संविधान ने कुछ पदों पर बैठे हुए हमारे सम्मानित व्यक्तियों के लिए कुछ अलग तरीके के प्रोविजंस दिए हुए हैं, उनको कुछ अलग तरीके के विशेषाधिकार दिए हुए हैं, लेकिन कानून अपनी तरह से काम करेगा, उस तरह की छूट वहां किसी तरीके की नहीं है। तो जो डेमोक्रेसी है मित्रों, आपको इसमें डेमोक्रेसी का वो जो एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि कानून के समक्ष समानता, ये इस लॉ में दिखाई दे रहा है। देखिए, जब हम कानून के समक्ष समानता की बात कहते हैं तो उसमें दो तरह की बातें इंप्लाइड होती है, दो तरह के उसके अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ यह निकलता है कि चाहे वो व्यक्ति गरीब से गरीब हो, कमजोर से कमजोर क्यों ना हो, कानून उसके साथ वही व्यवहार करेगा जो बड़े से व्यक्ति के साथ व्यवहार किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि धनी लोगों के लिए या पढ़े लिखे लोगों के लिए या उच्च वर्ग के लोगों के लिए तो कोई और कानून है और निम्न वर्ग के लिए कोई और कानून है। यह कानून के समक्ष समानता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कानून की निगाह में सब बराबर होंगे, ये दोनों, मतलब नागरिक के लिए, सभी नागरिक के लिए एक ही समान कानून होंगे, और दूसरा है कानून की निगाह में सभी बराबर होंगे। ये दो तरह की बातें कानून के समक्ष समानता कि जब हम बात करते हैं तो उसमें ये शामिल होती है। तो अब आप यहां देखिए कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष को भी हाई कोर्ट ने ये कहा है कि नहीं, आपको लोअर कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा, यानी कि वहां उनके लिए भी कोई अलग से रियायत रखी नहीं गई है। तो मित्रों, ये तथ्य इसमें से उभर कर आता है। तो हमें या तो सीधे सीधे इस तरह का कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है उसमें हम इस घटना का उपयोग करते हुए अपनी बात रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही पूछ लिया जाता है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत में पिछले कुछ समय से कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत का बहुत कठोरता से या सही मायने में पालन हो रहा है, यदि नहीं तो क्यों। इस तरह का अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप इस घटना की थोड़ी सी चर्चा करते हुए फिर आप अपनी बात रख सकते हैं, या फिर और इसी से मिलता जुलता कोई दूसरा प्रश्न यदि पूछा जाता है तो आप उसमें भी इस घटना की का उल्लेख कर सकते हैं। दोस्तों, जो दूसरी खबर थी वो भारत नेपाल संबंधों को लेकर के थी, और आप देख रहे हैं कि जब से वहां नया संविधान लागू हुआ है तब से भारत और नेपाल के संबंध खराब ही लगातार होते चले जा रहे हैं, खासकर वो मधेशियों के मामले को लेकर के, और उसके बारे में हम लोग कई बार बातें कर चुके हैं इसलिए मैं उन्हें नहीं दोहराना चाहूंगा। हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे 11,000 ट्रक्स वहां सामान लेकर के, सामान से लदे हुए खड़े हैं, दवाइयां भेजी जा रही हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन उनको अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा है, मतलब नाकेबंदी से की हुई है। तो इसमें भारत का अपना कोई दोष नहीं है। स्थिति जो भी हो, लेकिन जो सबसे दुर्भाग्यजनक बात है वो कुल मिलाकर यह कि भारत और नेपाल के संबंध लगातार एक तरह से वाद विवाद वाले आपस में कुछ इसी तरीके से तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। देखते हैं तो आगे ये क्या शेप लेगा, क्योंकि जब तक ये एक तरीके से चीजें सेटल नहीं हो जाती तब तक सिविल सर्विस परीक्षा में एक किस फॉर्मेट में आएगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। दोस्तों, AIR न्यूज में आज ये दो ही इंपॉर्टेंट खबरें थी। अब मैं आता हूं खासकर न्यूज़पेपर्स पर। आज के न्यूज़पेपर्स में एक जो खबर है, मैं समझता हूं कि एक बड़ी खबर है, उसका आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा, उपयोग कीजिएगा, और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ये कह दिया है कि जो समान नागरिक संहिता है, जो कानून बनाना है, एक सिविल कोड, सिविल कोड बनाना है सबके लिए, सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता जो बनाना है, नागरिक संहिता, वो सरकार बनाएगी और उससे न्यायालय का कोई लेना देना नहीं है। उनके सामने एक याचिका, तब जनहित याचिका गई थी जिसको उन्होंने टर्न डाउन कर दिया कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, और जब न्यायालय के पास कोई भी मामला आता है, कोई भी अगर नागरिक न्यायालय के सामने जाता है और अपनी बात रखता है और फिर वो संविधान के तहत समान अधिकार की मांग करता है, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि न्यायालय अपना निर्णय संविधान के आधार पर ही देता है। जैसे अगर हम एक उदाहरण लें तो मान लीजिए कि तलाक के बाद महिला के अधिकारों की बात है, जीवन यापन, गुजारा भत्ता की बात है। अब अगर हम उसे मुस्लिम पर्सनल लॉ पर लेकर के चलते हैं तो वो देने के लिए मजबूर नहीं है, पति देने के लिए मजबूर नहीं है, लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं तो फिर महिला अधिकार के अंतर्गत उसको गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा है कि यदि कोई नागरिक संविधान के तहत अपने अधिकारों की मांग करेगा तो फिर हम उसी के अनुसार उसका फैसला करेंगे, फिर चाहे वो उनके अपनी जो उनका अपना जो पर्सनल लॉ है उस पर्सनल लॉ के खिलाफ ही क्यों न जाता हो। और मित्रों, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट पहले ही सरकार से कह चुका है कि वो जल्दी से जल्दी समान नागरिक संहिता बनाए, और फिर से उसने कहा है कि सरकार को इस काम में देरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ राजनीतिक स्थितियां होती हैं, कुछ समय भी होता है जिसकी वजह से शायद यह संभव अभी उतना नहीं हो पा रहा है। देखते हैं कि ये कब हो पाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि भारत में जब समान नागरिक संहिता जिस दिन लागू होगा वो भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा कदम खासकर डेमोक्रेटी या लोकतंत्र की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण वो बात घटित होगी। फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, ये आपको नॉलेज सेंटर में पढ़ने को मिलेगा, और ये बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है, और मैं समझता हूं कि सिविल सर्विस के स्टूडेंट्स को इस आर्टिकल को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये आर्टिकल बेसिकली पीपल पार्टिसिपेशन के ऊपर है। पीपल पार्टिसिपेशन का मतलब है कि जो हमारे देश के नागरिक हैं वो किस तरीके से लोकतंत्र में सही मायने में भागीदार हो सकते हैं, और इसमें इन्होंने जो लोकतंत्र में भागीदारी की जो बात कही है वो लोकल बॉडीज के तहत की है, यानी कि जिसमें आप पंचायतों को कह लें, नगर निगम को कह लें, नगर पालिकाओं को कह लें, उस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा है, क्योंकि ये जो संस्थाएं होती हैं ये लोगों के जीवन से सीधे सीधे जुड़ी हुई संस्थाएं होती हैं। मित्रों, इसमें ये आपको नोट भी कर लेना चाहिए कि दो संस्थाओं ने मिलकर के अभी एक स्टडी की है, इसमें एक है ब्राउन यूनिवर्सिटी और दूसरा है जन आग्रह, बेंगलोर का एनजीओ है जन आग्रह, इन दोनों ने मिलकर के स्टडी की खासकर बेंगलोर में, और वो जानकर के दंग रह गए स्टडीज के अंतर्गत कि आपको ताज्जुब होगा कि जैसे मोहल्ले होते हैं, मोहल्ले में जो मीटिंग होती है, अगर हम शहरों की बात करें तो पार्षदों का एक एरिया होता है जिसमें एक पार्षद चुने जाते हैं, उनकी जब मीटिंग होती है मोहल्लों की या बोर्ड की जो मीटिंग होती है जिनको हम वार्ड काउंसिल कहते हैं, तो उसमें उसको केवल 2.6% लोग अटेंड करते हैं, वेयर आर 97% वो अटेंड ही नहीं करते। और उसमें भी आश्चर्य की बात उन्होंने ये कहा कि जब उनसे ये पूछा गया कि भाई आपके यहां का पार्षद कौन है, काउंसलर कौन है आपके एरिया का, तो उन्होंने बताया कि 2/3 यानी कि लगभग 66% को अपने यहां के पार्षद का नाम ही नहीं मालूम था कि हमारे यहां पार्षद कौन है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह कि इन सबको यह मालूम था कि चीफ मिनिस्टर कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, मतलब जो बड़े जो लीडर्स हैं उनके नाम मालूम है लेकिन अपने पार्षद का नाम नहीं मालूम। उन्होंने चिंता यह व्यक्त की कि जबकि उनकी अपनी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, चाहे पानी की जरूरत हो, चाहे सुरक्षा की जरूरत हो, चाहे बिजली की जरूरत हो, चाहे सफाई की जरूरत हो, ये सब काम पार्षद करेगा और उनको पार्षद का नाम ही नहीं मालूम। और स्टडीज में शो किया है कि लोगों को पता ही नहीं है कि अगर पानी की समस्या है तो उसका निदान कौन करेगा, अगर कूड़ा नहीं उठ रहा है तो वो किसके पास जाएं और कहें कि भैया इस कूड़े को उठाओ, ड्रेनेज सिस्टम को कौन ठीक करेगा, उनको जानकारी ही नहीं। तो उन्होंने बताया है कि कितनी बुरी स्थिति है जिसको हम कहते हैं कि ये लोकल जो बॉडीज हमारी डेमोक्रेटिक बॉडीज हैं ये पीपल के पार्टिसिपेशन से चलना चाहिए। हमारे 74th अमेंडमेंट में बिल्कुल सीधे सीधे ये बात कही गई है कि इनमें लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। तो किस तरीके से इन लोगों की भागीदारी हो, जब उन लोगों से पूछा कि भैया आपका क्या काम है, नागरिकों से जब पूछा गया कि आपका क्या काम है बताइए, तो उन्होंने कहा कि हमारा दो काम है, एक तो ये कि हम वोट दे दें, 72% लोगों ने कहा कि हम वोट दे दें, वोट हमने दे दिया, और लगभग इतने ही परसेंट लोगों ने कहा कि हमारा यही काम है कि हम जो कानून बने हुए हैं उनका पालन करें। ये वो अपने अधिकार समझ रहे हैं, ये अपने कर्तव्य समझ रहे हैं, इससे आगे हट करके वो कहीं जाते ही नहीं, कुछ कर ही नहीं पाते। तो मित्रों, इसमें इन्होंने दिया है कि जब तक पीपल पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक सही मायने में जो हमारी सिविक बॉडीज हैं एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत काम नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक लोग नहीं बताएंगे कि हमें किन चीजों की जरूरत है तब तक वो जो बॉडीज हैं कैसे लोगों के हिसाब से अपने आप को ढाल सकेंगी और काम कर सकेंगी। फिर इसमें इन्होंने दो बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं दोस्तों, एक तो केरल का दिया है। केरल में जब पंचायती राज्य में सुधार किया गया तो वहां आपको ताज्जुब होगा कि लगभग 35 से 40% जो स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट है 35 से 40% बजट पर आप समझिए कि वहां की जो डेमोक्रेटिक बॉडीज है, जो लोकल बॉडीज है, उनका नियंत्रण है, या सीधे सीधे पीपल, लोगों का नियंत्रण है। वो बताते हैं कि इसका खर्च कैसे किया जाना चाहिए, हमारी कौन सी जरूरत है। फिर उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया है पुणे का, कि पुणे में भी यही हुआ, और पुणे में तो इंट्रोड्यूस ही किया गया पार्टिसिपेटरी बजटिंग 2006 में। पार्टिसिपेटरी बजटिंग, ये बजट आया है, इस बजट को कैसे खर्च किया जाए, तो उसमें उनकी भूमिका होती है। और बताया कि वहां हालत ये हुआ कि 6,000 सजेशंस सिटीजन्स से आए, जो ये बताते थे कि इस पैसा का खर्च कैसे, इस पैसे को कैसे खर्च किया जाना चाहिए। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि लोगों ने अब उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है, और स्वाभाविक है कि जब लोग इंटरेस्ट लेंगे तो फिर उन बॉडीज के जो काम होंगे वो नो डाउट पहले से कई गुना ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, चूंकि डेमोक्रेसी से रिलेटेड है और खासकर इसमें लोकल बॉडीज भी हैं, डेमोक्रेसी भी है, लोगों का पार्टिसिपेशन भी है, स्थानीय डेवलपमेंट भी है, और सच पूछे तो स्मार्ट सिटी का भी कॉन्सेप्ट है कि आप स्मार्ट सिटी को कैसे ठीक करेंगे अगर सिटीजन्स पार्टिसिपेशन नहीं हुआ तो इसमें ढेर सारे एंगल्स बनते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को लेकर के मैंने थोड़ी सी डिटेल में आपसे बात की है। ये नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल रहेगा, आप इसे देख लेंगे, और इसके अतिरिक्त भी आज बहुत से आपको क्लिपिंग्स नॉलेज सेंटर पर प्रोवाइड किए गए हैं, आप उन्हें देख लेंगे। मित्रों, मैं अंतिम चरण पर आता हूं, जो ईमेल का चरण है। फ्रेंड्स, एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कुछ मेल्स मेरे पास बहुत बड़े बड़े आए हैं, प्लीज आप लोग बड़ा मेल न लिखें, बल्कि ज्यादा अच्छा अभ्यास होगा आपका कि बड़े मेल, अगर आप समझते हैं कि बड़े मेल से ही आप अपनी बात कह सकेंगे, तो एक मौका है कि आप उसको छोटे में कहने की कोशिश कीजिए। बड़ी से बड़ी बात को भी छोटे मेल में कहा जा सकता है, क्योंकि बड़े मेल लिखने का मतलब आप यही मान करके चलिए कि मतलब मुझे एक तरीके से आप वो अवसर दे रहे हैं कि मैं उस मेल के साथ शायद पूरा न्याय ना कर सकूं, और अगर मैं न्याय नहीं कर सकता हूं तो मुझे बड़ा अपराध बोध सा महसूस होता है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि मेल छोटा लिखें। तो मित्रों, बहुत से मेल आए हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और उन सबका बहुत बहुत आभार। और इसी में से कुछ के नाम हैं, सुदेश, प्रदीप कुमार कैथल हरियाणा से, अभय मिश्रा गोरखपुर से, ईशान गुप्ता वाराणसी से, नीरज शर्मा खुर्जा उत्तर प्रदेश से, गौरव सिंह इलाहाबाद से, और वरुण कुमार पांडे, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इसी के साथ ही आज का ये डेली ऑडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।